Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
देखिए पतिव्रता स्त्री में इतना सामर्थ्य है कि सूर्य को भी स्तंभित कर सकती है, रोक सकती है। यह पातित व्रत का प्रभाव है। तो यदि हम जहां भी चाहे वहां पर चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर तीव्र भावना चाहिए। तीव्र भावना हो तो आप माता पिता के पिंड से, पति के पिंड से या जो है पाषाण खंड से भी भगवान को अभिव्यक्त कर लेते हैं। प्रहलाद जी की ऐसी तीव्र भावना थी कि तीव्र भावना के होने के कारण उसी परमात्मा को नरसिंहाकार रूप से पाषाण से अभिव्यक्त होना पड़ा। इसलिए यहां पर कह दिया कि जो सगुण साकार है वह सभी के द्वारा स्तुत है, बंद है और उसमें सबका मन लग जाता है, बुद्धि लग जाती है। निर्गुण निराकार में भले ही सबकी बुद्धि न लगे परंतु सगुण साकार में सबकी बुद्धि लग ही जाती है। ये संसार जो आप देख रहे हैं सब सगुण साकार परमात्मा का ही स्वरूप है। विश्वास न होता हो तो आप अजमा सकते हैं। यदि जिसको आप बहुत प्रिय मानते हैं उस प्रिय से आत्म ज्योति निकल जाए तो वह प्रिय प्रिय नहीं होता है, प्रिया प्रिया नहीं होती है। आप इसको कर दे कि मिट्टी का ढेर हो गया, संसार में ले जाओ। प्रत्यक्ष सिद्ध है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, पूरा संसार ब्रह्म है, ब्रह्म का ही ये समझिए कि विस्तार है। जब ब्रह्म का विस्तार है जहां तो ज्योति जैसी है उसको वैसा समझना यथार्थ ज्ञान कहलाता है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है और मिथ्या ज्ञान के नाश से मुक्त होता है। यदि हम सर्वत्र भगवत दृष्टि करें तो निश्चित ही भगवत तत्व का साक्षात्कार होता है और जब तक वह तत्व है तभी तक संसार का सारा व्यवहार चल रहा है। चाहे हम किसी को माताजी कहें, पिताजी कहें या पुत्र कहें, प्यारे कहें, कुछ भी शब्द का प्रयोग करें, उसी चैतन्य के होने से सारा प्रयोग हो रहा है। यदि आप किसी को दुश्मन मानते हैं दुश्मन के अंदर वही चैतन्य है, वही चैतन्य आपको दुश्मन रूप से दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार ये कहीं धरती, आकाश, पाताल, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की चांदनी, यदि आपने खेत में नींबू का बीज लगाया तो खट्टा फल होगा, आम का बीज लगाएंगे तो मीठा पौधा होगा। अंतर खेत में या सूर्य के रोशनी में नहीं, बीज में अंतर है। जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा, वैसा ही फल होगा। इसी प्रकार से सबके अंदर एक ही चैतन्य होने पर भी सबके संस्कार, वासना, प्रारब्ध कर्म के अलग अलग होने से अलग अलग प्रतीतियां होती हैं। ये मेरा शत्रु, ये मेरा मित्र, ये औपाधिक दोष है। उपाधि को हटा दे सब तो चैतन्यमय ही है। परंतु यहाँ पर पुष्प दंताचार्य जी कहते हैं, जो दूसरे श्लोक का प्रतिपाद्य विषय है, कि निर्गुण ब्रह्म में आसानी से किसी का मन बाणी नहीं लगता है। इसको गीता ही बतलाया है, अव्यक्तम व्यक्ति माम पन्नम मनन्ति माम अबुद्धय। और दूसरी जगह कहा कि अव्यक्त तत्व को पाना देवद्भिर देधारियों के द्वारा बड़ा कठिन है। भले ही निर्गुण निराकार ब्रह्म साक्षात्कार अनुभूति में न आए फिर भी उसकी महिमा इसी महिमन में ज्यादा गाई है। जिस प्रकार विद्यालय में, हाई स्कूल तक जो विद्यालय होते हैं, वहां पर जो टीचर विद्यार्थियों को खेल कूद सिखाता है, क्रिकेट है, टेनिस, बैडमिंटन है, उसको विद्यार्थी बहुत पसंद करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। परंतु जो अध्यापक अनुशासित करता हो, गणित पढ़ाता हो या विज्ञान पढ़ाता हो, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि जरा कठिन विषय है, उसमें मन बुद्धि को जबरन लगाना पड़ता है, या जो है अध्यापक के भय से विज्ञान या गणित की तैयारी करनी पड़ती है। परंतु खेल कुछ स्वाभाविक है, उसके सारे तारीफ करते हैं। ये तो हो गए विद्यार्थी की दृष्टि, परंतु विद्यालय के दृष्टि से उसके नियमानुसार जो विद्यालय का खेल कूद का टीचर है उसको कमजोर मानते हैं, उसका वेतन भी सबसे कम होता है, परंतु विद्यार्थी की दृष्टि से वही श्रेष्ठ है और विद्यालय के दृष्टि से विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक श्रेष्ठ है। ऐसे ज्ञान ज्ञानी के दृष्टि से निर्गुण निराकार ब्रह्म को यहाँ पर श्रेष्ठता प्रदान किया है, और अज्ञानियों के दृष्टि से बताया कि भाई तुम निर्गुण निराकार को समझ नहीं सकते, इसलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म की भावना करके कहीं से भी चैतन्य को अभिव्यक्त कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर कई दृष्टांत को देकर समझाया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा श्लोक उच्चारण कर ले। मधुस्फीता वाच परमम अमृतम निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुर गुरोर्विस्मय पदम मम त्वेतं वाणीं गुणकथन पुण्येन भवत पुनामेत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तीसरे श्लोक में बतला रहे हैं कि ये जो मैं स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति क्यों कर रहा हूँ? जब आप मन वाणी के विषय नहीं है निर्गुण निराकार रूप से और सगुण साकार रूप से सब कुछ आप ही हैं, तो फिर स्तुति क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए? यहाँ बतला रहे हैं कि मैं आपके गुण कथन के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र कर रहा हूँ। मधुस्फीता वाच, मधुस्फीता वाच का अर्थ वाच बोलते हैं वेद को। आपने ही मधु से सने हुए वेद वाणी को सर्वोत्कृष्ट है उसको आपने उत्पन्न किया, जिसकी अध्येता अमृत तत्व को उपलब्ध होते हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, आपको सुर गुरु बोलते हैं बृहस्पति को, देवताओं के गुरु बृहस्पति की वाणी भी स्तुति भी आपको आश्चर्यचकित नहीं कर सकती है, फिर मैं मुझ जैसे क्षुद्र व्यक्ति की स्तुति आपको कैसे आश्चर्य में डाल सकती है? मम त्वेतां वाणी, ये जो हमारी वाणी है, भवतः आपके गुण कथन पुण्येन पुनामि, गुणों का कथन करके पवित्र कर रहा हूँ अपने बुद्धि को, अपनी वाणी को गुणगान के द्वारा मैं केवल पवित्र कर रहा हूँ। हे पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता, और हमारी बुद्धि आप में लगी रहे इस प्रकार से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। इस प्रकार से तीसरे में सार्थकता बदलाया कि हम क्यों जो है भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाने से सूर्य का अंधकार दूर नहीं होता, प्रत्युत हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, हमारे शुद्ध भाव उदित होते हैं। इसी प्रकार से मैं भी स्तुति के द्वारा अपने वाणी को, मन को, बुद्धि को पवित्र कर रहा हूँ, क्योंकि शुद्ध मन के द्वारा ही आपका दर्शन होता है। अब चौथा श्लोक देख ले। तवैश्वर्यं यत्तद् जगदुदय रक्षा प्रलय कृत् त्रैवस्तु व्यस्तम् तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिम् विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके जडधिय। तवैश्वर्यम्, तव हे परमेश्वर, आपके ऐश्वर्य कैसे हैं? तो बतला रहे हैं जिस ऐश्वर्य से जगत का उदय, उदय बोलते उत्पत्ति, और रक्षा पालन और प्रलय होता है। जिस प्रकार से एक ही परमाणु से, न्यूक्लियर जो आजकल चल रहा है ना, बहुत बड़ा विचार है, एक ही परमाणु से हमारे आजीविका के संसाधन विद्युत ऊर्जा भी तैयार होती है, और उसी के द्वारा हमारे जीवन के, समाज के, देश को विनष्ट करने वाले एटम बम, परमाणु बम भी तैयार होते हैं। दोनों है, आप उससे आजीविका के संसाधन भी तैयार कर सकते हैं और साथ में रक्षा के संसाधन ही बना सकते हैं और विनाशक हथियार भी। एक ही ऊर्जा है। इसी प्रकार से आपके ऐश्वर्य से संसार की उत्पत्ति होती है, रक्षा होता है, और आपके ही कोप से संसार का प्रलय होता है। एक बार महर्षि पिपलाद की बचपन की घटना है। जब पिपलाद 12 वर्ष के थे तो उनके मामा ने कहा कि तू बार बार अपने नाना को पिताजी क्यों कहता है, क्योंकि पिपलाद के पिताजी का शरीर बचपन में छूट गया था। शरीर छूटने के बाद पिपलाद अपने माँ के साथ मामा के घर रहते थे, तो छोटी अवस्था थी और हमेशा जो है अपने नाना को पिताजी पिताजी कह करके पुकारते थे। जब मामा ने इस प्रकार से कहा कि तू अपने नाना को पिताजी पिताजी क्यों कहता है, तो अपनी माँ से पूछे कि माँ तू सच बता कि हमारे मामा लोग हमें क्यों फटकारते हैं, बार बार क्यों समझाते हैं कि तू इनको नाना जी कह, तेरे पिताजी नहीं है, तो आखिर हमारे पिताजी कौन है। माँ ने कहा कि जब तू 5 वर्ष का था तभी तेरे पिता देवताओं के हित के लिए अपने शरीर को त्याग कर दिए। दधीची ऋषि अपने शरीर को त्याग कर दिए, उसके द्वारा वज्र बना। अब इस बात को सुनने के बाद पिपलाद को बहुत क्रोध हुआ। बोले देवता इतने स्वार्थी कि अपने स्वार्थ के लिए हमारे पिता के शरीर को याचना में मांग लिया और उससे जो है अस्त्र शस्त्रों को तैयार किया। मैं तपस्या करके देवताओं को नष्ट कर दूंगा। माँ ने बहुत समझाया, ये काम तेरा ठीक नहीं, पर छोटी अवस्था 12 वर्ष की, माने नहीं। माँ से भगवान शंकर की उपासना की पद्धति सीखा। सीखने के बाद सीधा कैलाश पर्वत गए, वहां जाकर घनघोर तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद कहा तू वरदान मांग। यही वरदान मांगा कि आप जिस शक्ति से संसार को नष्ट करते हैं, महाप्रलय मचाते हैं, वही शक्ति हमें प्रदान करो। भगवान शंकर ने कहा तू शक्ति लेके क्या करेगा। पिपलाद ने कहा कि मैं देवताओं को नष्ट करना चाहता हूं। भगवान शंकर पूछे देवताओं को नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। वो लेकिन देवताओं ने हमारे पिता को अपने स्वार्थ के लिए जो है इनका शरीर जो है नष्ट करके अस्त्र शस्त्र का तैयार किया, इसलिए मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। महादेव ने बहुत समझाया कि तेरी यातना ठीक नहीं है, इससे तेरा ही नाश होगा, परंतु माने नहीं। तो महादेव ने कहा ठीक, ऐसा करो कि तुम आंख बंद कर बैठ जाओ, मैं तुझे पहले थोड़ी शक्ति देता हूँ, इसका प्रयोग करके देखना। भगवान शंकर के सामने पिपलाद बैठ गए आंख बंद करके। भगवान शंकर ने कहा तू तैयार हो जा, मैं तुझे अपनी संहारक शक्ति देता हूँ जिससे मैं दुनिया का संहार करता हूँ। बस जैसे पिपलाद आंख बंद किए, जब देवताओं का नाश करना है, सबसे पहले सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर जो इंद्र का नष्ट करना है, बस नष्ट करने की भावना आई कि उनकी आंखें जलने लगी, कान जो फटने लगे, थोड़ा शरीर टूटने लगा, दो से चिल्लाए बचाओ बचाओ। महादेव ने कहा क्या हुआ, तू तो संहारक शक्ति ले रहा था, इतने से घबरा गया। पिपलाद ने पूछा कि मैं तो आपसे संहारक शक्ति मांग रहा था, जैसे आप संहार करते हैं, आप तो उल्टा हमारे शरीर को नष्ट कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा यह जो तेरी आंख है, इस तेरी आंख के समष्टि देवता भगवान सूर्य हैं। ये जो तेरा कान है, इस कान की समष्टि दिक् देवता है। तेरे हाथ के समष्टि देवता इंद्र हैं। तो जब तू उनको नष्ट करेगा तो तू कहां बचेगा? उसी समष्टि का अंश तेरी आंख, नाक, कान, त्वचा, हस्त, पाद, पायु उपस्थ है। पिपलाद ने पूछा, तो फिर आप कैसे संसार का नाश करते हैं? भगवान शंकर ने कहा, मैं व्यष्टि भाव में नहीं रहता हूं। जैसे मैं समष्टि भाव में हूं, वैसे तू भी समष्टि भाव में हो जाएगा तो सब कुछ कर सकता है। पहले तो व्यष्टि भाव को त्याग, व्यष्टि मन लगी यह मैं हूं, इसका नाम व्यष्टि भाव है। समष्टि का अर्थ सर्वात्म भाव। तो पहले तो व्यष्टि भाव को छोड़ कि मैं यह पिपलाद ऋषि हूं, इस भाव को छोड़ने के बाद समष्टि भाव को प्राप्त करेगा, तब जाकर यह शक्ति तू पचा सकता है। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग व्यष्टि में जीना चाहते हैं और व्यष्टि के द्वारा उस सर्वात्म भाव की अनुभूति असंभव है। व्यष्टि का तात्पर्य है कि सीमित अहंता, जो अपने आप को हम लोग मैं मानकर चल रहे हैं। ये जब तक हमारे अंदर मैं मान ले कि मैं जो है अमुक भाई हूं, अमुक लाल हूं, ये जो नाम रूप का व्यष्टि भावना है, तब तक समष्टि का भूमा सर्वात्म सुख की अनुभूति असंभव है। हालांकि सुसुप्ति में कुछ समय के लिए व्यष्टि भाव नष्ट हो जाता है, विलय हो जाता है, तो विलय होने के बाद उस समय समष्टि सुख सर्वात्म सुख की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर पुष्पदंताचार्य बतला रहे हैं, उसी भगवान के ऐश्वर्य शक्ति को लेकर संसार का सृजन पालन संहार होता है। त्रैवस्तु व्यस्तम तिसृषु गुण भिन्नाशु तनुषु। त्रय बोलते वेद को, हालांकि वेद चार हैं, पर वेद के लिए त्रय शब्द का प्रयोग होता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये वेद तीन ही था, बाद में अथर्ववेद हुआ, पर बिल्कुल ये जो है ना नासमझी व्याख्यान है। क्योंकि त्रय शब्द का तात्पर्य त्रय प्रतिपादकत्वात् त्रय पदेन वेद उच्यते। इस प्रकार से वेद के व्याख्याता सायण ने व्याख्यान किया है। त्रय मतलब की कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, इन तीनों का वेद व्याख्याता है, इसलिए वेद को त्रय शब्द से कहा जाता है। तो त्रय मतलब की वेद में आग का स्वरूप, व्यस्तम का अर्थ है अनेक रूप से प्रतिपादित है। अनेक रूप से तात्पर्य है कि आप ही इंद्र बनकर शासन करते हैं, सूर्य बनकर के प्रकाश करते हैं, चंद्रमा बनकर औषधियों का पोषण करते हैं। इस प्रकार से आप का स्वरूप वेद में तरह तरह से प्रतिपादित है। तीसरी सुगुण भिन्नाश तनुषु, और तीनों गुणों के द्वारा अनेक स्वरूप आपके हैं। सत्व प्रधान देवता है, रजस प्रधान मनुष्य है, तमस प्रधान दैत्य है। तो इन सब में आपका ही स्वरूप अभिव्यक्त होता है। अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयाम रमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम विदधत इहैके जडधिय। अभव्यानाम अस्मिन् रमणीयाम अभव्यानाम अरमणीम विहंतुम व्याक्रोशीम जडधिय इहैके विदधत। ऐसा में करना कि आपका जो बहुत सुंदर रमणीय कमनीय स्वरूप है, उस कमनीय रमणीय स्वरूप में भी कुछ भाग्यहीन, अभव्य बोलते भाग्यहीन मनुष्य विहंतुम व्याक्रोशीम, जो जड बुद्धि वाले हैं, उसका खंडन करना चाहते हैं, निराकरण करना करते हैं। इसलिए निराकरण करते हैं कि जो परमात्मा का दो स्वरूप निर्गुण निराकार अपरिच्छिन्न है, और दूसरा है परिच्छिन्न सगुण साकार। यदि हम किसी के सामने अपरिच्छिन्न निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश करें तो कहता है कि हमें समझ में नहीं आता है, अनुभूति के पथ में नहीं आता है। और यदि आप सगुण साकार का वर्णन करो तो बोलता है कि इसमें तो सारे दोषी दोष हम में इनमें क्या अंतर, लुकाते हैं ना सीधा, सबके अंदर दोष दिखाई पड़ेगा। तो सगुण साकार के अंदर तो आपको दोष दिखाई पड़ेगा कि जैसे मैं वैसे ये भगवान है, और निर्गुण निराकार समझ में नहीं आता है तो आखिर में किस प्रकार से उपदेश करें। तो जो जिनकी बुद्धि नष्ट हो चुकी है, जड़ बुद्धि वाले, उस कमनीय रमणीय भगवान भी दोष दर्शन किया करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो राम कृष्ण को अवतारी न मानकर सिर्फ महापुरुष मानते हैं, ऐसी मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, कहते हैं कि जैसे हम वैसे राम और कृष्ण हुए, और उन्होंने भी अपना कार्य किया, हमने भी किया, इतना अंतर कि हमसे उनमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य और शक्ति थी। विचार कीजिए, अपरिच्छिन्न रूप को तो समझ नहीं सके, और वही अपरिच्छिन्न परिच्छिन्न रूप से बनकर समझाने आया, उसमें भी गुण दोष बुद्धि हो जाने के कारण से सन्मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए कहा कि हे बरद, बरद मतलब कि सबको आप वरदान देने वाले हैं। बरद केवल यहाँ पर भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया, बरम ददाति बरद, बरद बोलते श्रेष्ठ, जो हमेशा श्रेष्ठ अच्छी चीज को प्रदान करे उसका नाम है बरद। आप भगवान शंकर की थोड़ी उपासना करो, कुछ भी मांग लो, भोले बाबा कोई विचार भी नहीं करते कि मैं जो है किसको क्या दे रहा हूं। भस्मासुर, भगवान शंकर की बहुत उपासना की, उपासना के बाद जब भगवान शंकर ने कहा तू वरदान मांग, तो क्या मांगा, जिसके मस्तक पर हाथ रखूं वह जलकर राख हो जाए। भगवान कहिए तथास्तु। वरदान पाने के बाद कुछ क्षण तक विचारता रहा कि भगवान शंकर संसार में पूज्य क्यों है, क्योंकि इनके पास पार्वती जी है, यदि मैं इनको भस्म करके पार्वती को अपना लूं तो मैं भी जगत बंदी हो जाऊंगा, जगत में पूजित हो जाऊंगा। भगवान शंकर की तरफ दौड़ा, ये भोले बाबा ऐसे है ना कि विचार नहीं करते किसको क्या देना, इसलिए बरद कह दिया। रमणीयम अरमणीम बुद्धि विधता जडधिय, एक बुढ़िया माता थी, उसने भगवान शंकर की उपासना की, उपासना करने के बाद उसने वरदान में भगवान शंकर से कुछ चीज मांगी। भगवान शंकर ने कहा देख तेरी उपासना थोड़ी है, तू एक वाक्य में एक ही वरदान केवल मांग सकती है। बुढ़िया माँ ने कहा यार समय दीजिए विचारने का, विचार कर बताऊंगी। भगवान शंकर एक दिन का पूरा समय दे दिए, एक दिन तक विचारती रहे कि एक ही वाक्य में क्या वरदान मांगे, सबसे परामर्श किया। दूसरे दिन गई, भगवान शंकर ने कहा कि तू विचार कर आ गई, तुझे क्या मांगना है बता। बुढ़िया माँ ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक ही वरदान मांगती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरी में दूध भात खाता हुआ देखूं। सब मांग लिया, पोता बिना पुत्र के पोता नहीं होगा, मतलब कि वो दूसरी पीढ़ी मांग ली, और बिना धन के सोना का कटोरी कहाँ से आएगा, अब बिना गाय के दूध भात नहीं मिलेगा, गोधन मांग लिया, सुवर्ण द्रव्य सुवर्ण धन मांग लिया, आंख भी मांग लिया और पुत्र पौत्री मांग लिया, ये समझो वाक चातुरी है। परंतु भगवान शंकर भोले हैं, अवगढ़ धानी कुछ भी सबको दे देते हैं, स्वयं तो शमशान में रखते हैं, पास में कुछ नहीं, इसलिए नहीं रखते हैं पास में, क्योंकि अर्थो ही अनर्थाय भवती, शास्त्र का वचन है, ये जितना भी अर्थ है ना, इस अर्थ की परिणति अंत में अनर्थाय, इसलिए भगवान शंकर हमेशा शमशान में निर्विषयक हैं, परंतु प्रार्थना करने वाले कुछ सब कुछ प्रदान कर देते हैं, ऐसे भगवान शंकर अवहरदानी हैं। फिर भी ऐसे दिव्य कमनीय स्वरूप का भी ये जड़ बुद्धि वाले उसका निराकरण खंडन तरह तरह से किया करते हैं, इसीलिए यहाँ पर श्रुति कहती है कि उनके लिए हमें खेद है, क्योंकि सूती माता के समान है। जैसे माता चाहे कैसा ही पुत्र हो, माता का हृदय बहुत कोमल होता है, अपने पुत्र का कभी माँ अनिष्ट नहीं चाहती है। पुत्र हमेशा माँ को डांटता है, फटकारता है, कड़वाहट बोलता है, फिर भी माँ सह लेती है। माँ को ही पता है कि पुत्र को इतना बड़ा बनाने में कितनी तकलीफ, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। बेटे तो तुरंत कह देते माँ से, तूने तो अपना कर्तव्य का पालन किया। पिता को भी बोल देते हैं कि पिता आप तो केवल 500 महीना कमाते थे, देखो मैं आज 1,00,000 महीना कमा रहा हूँ। आजकल के बेटे ऐसा आरोप करते हैं ना, पर वास्तव में उस पिता ने 500 रुपया महीना कमाकर कितनी तपस्या करके तुम्हें पढ़ाया, पढ़ा करके आज तुम्हें इतना योग्य बनाया कि आप 1,00,000 महीना कमा रहे, इस बात को तो बिल्कुल सोचता ही नहीं। इतनी जड़ बुद्धि हो गई कि माता पिता के उस कृतज्ञता को बिल्कुल भूल जाता है, उल्टे उलाहना देता है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। ऐसे ही ये जो संसार है, भगवान शंकर से उत्पन्न हुए, वही पालन किए, रक्षा कर रहे हैं। पर जड़ बुद्धि वाले कहते कि बस मंदिर में पाषाण की तरह बैठे हैं, ये तो जड़ है, इसकी पूजा करने से क्या होता है। इसलिए उनको यहाँ पर जडधीय उस दंताचार्य जी ने कहा है। अब आगे जो है कि जगत के विषय में दार्शनिक चिंतन आएगा, कल से ये ऐतिहासिक विषय कम है, अधिक दार्शनिक होगा, इसलिए कल से जरा सावधान से सुनना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।